आइए थोड़ा सा सूरत यूनुस का खुलासा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सूरत है। सूरत तौबा के मुकाबले में इसका बहुत हल्का टॉपिक है। जो आपको फील हो रहा है 2 दिन से सूरत अनफाल और तौबा सुनते वक्त बोझ, वो इंशाल्लाह कम होगा। इस सूरत में बहुत खूबसूरत तरीके से या यूहन्नास का लफ्ज़ 14 बार आया है। कुरान का कसरत से जिक्र है इसमें, किताब का जिक्र है। इसका पूरा टॉपिक है कि कुरान को अपनी ज़िंदगी बना लो। अल कुरानु हयाती, हकीकत में ये सूरत है। नाम यूनस है तो ऐसे लगता है कि शायद इसमें हज़रत यूनस के किस्से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में हज़रत यूनस की जो कौम थी उसकी पक्की सच्ची तौबा का जिक्र है। पिछली सूरत में 3 सहाबा की तौबा थी, तो इस सूरत में कौम यूनस की तौबा का इशारा है। और इसमें ईमान बिर रिसाला पे भी बात होती है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि 5 बड़े मज़मून हैं। आयत नंबर 1 से 2 का टॉपिक क्या है? कुरान हिकमत पर मबनी है और ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। फिर आयत नंबर 3 से 20 का टॉपिक है कुरैश के मुशरिकीन और मुनकरीन आखरत से बहस मुबासे और कुरान का दिफा, यानी मक्का वाले अल्लाह के नबी को झुटलाते थे और इसी में कुरान के बारे में बातें करते थे। तो आप बड़े खूबसूरत तरीके से देखेंगे और मेरे आपके लिए इसमें सबक होगा कि अगर आज के दौर में लोग हमारे इस्लाम को कुछ बुरा कहें तो हमने उसको कैसे बदलना, और लोग कुरान को बुरा भला कहें तो उसके जवाब में हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। फिर आयत नंबर 21 से 46 में कुरैश की दुनियादाराना मादा परस्त क़्यादत से झगड़ा और कुरान का दिफा। पूरी सूरत में आप देख रहे हैं कुरान का दिफा है। अल्लाह आपको मुझे भी सिखा दे। फिर इसके बाद आयत नंबर 47 से 58 में कुरैश के मुनकरीन रिसालत और मुनकरीन क़्यामत से मुजादले और कुरान के दिफा की बात आएगी। आयत नंबर 59 से 70 में कुरैश के मुशरिकाना अकायद और ख़ुद साख्ता हलाल और हराम के कवानीन पर मुबासा है। आयत 71 से 93 में कुरैश के मुशरिकीन और मुनकरीन आखरत से मुजादले और दिफाए कुरान की फिर बात आएगी। और आयत 94 से 103 में कुरान शक से पाक है, लोगों को तौहीद के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये टॉपिक है। और आयत नंबर 104 से 109 कुरान पर ईमान लाने, कुरान की पैरवी करने और सब्र व इस्तकामत का मुजाहरा करने की हिदायत है। ओवरऑल आप देखें तो पूरी सूरत का जो मरकज़ी मज़मून है कुरान पाक के दलाइल की रोशनी में रिसालत के मुनकर, आखरत के मुनकर और तौहीद के मुनकरीन पर हुज्जत तमाम की जा रही है, और इनके जो मुतालबात और एतराज़ात थे उसको देखा जाएगा। बहुत खूबसूरत सूरत है, इतनी हल्की फुल्की, और इसमें इतनी खूबसूरत आयतें आएंगी कि आपका दिल करेगा कि हम सिर्फ़ इस पे गौर व फ़िक्र करते जाएं। आइए शुरू करते हैं और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयात हैं जो हिकमत व दानिश से लबरेज़ हैं। गोया के कुरान पढ़ के हिकमत आती है। अब देखिए, जहाँ भी हरूफ मुक़त्तात होंगे ना, उसके फ़ौरन बाद जिक्र कुरान का होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको इसको समझने वाला बना दे। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने खुद इन्हीं में से एक आदमी को इशारा किया कि गफलत में पड़े हुए लोगों को चुका दे और जो मान लें इनको खुशखबरी दे दे कि इनके लिए इनके रब के पास सच्ची इज्जत और सरफराजी है। हाईलाइट करेंगे इसको, कदम असद के निंदा रबी। हकीकत यह है कि जब आप सच्ची किताब से जुड़ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी आपको सच्चाइयाँ देता है, आपका रास्ता देखता है, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में दिन ब दिन खैर और आफ़ियत आती रहेगी। क़ालल काफ़िरून इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। क्या यही बात है जिन पर मुनकरीन ने कहा कि ये शख्स तो खुला जादूगर है? इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द। हकीकत यह कि तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ और कायनात का निज़ाम चला रहा है। कोई शिफात करने वाला नहीं इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद सिफारिश करे। इसको नोट कीजिएगा, सिफारिश होगी मगर शराइत के साथ। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम इसी की इबादत करो, क्या फिर तुम होश में ना आओगे? यानी अल्लाह को छोड़कर दूसरों की तरफ जाते हो। इलैहि मरजिउकुम जमीया, इसी की तरफ तुम सब को लौट कर जाना है, ये अल्लाह का पक्का वादा है। 3 सेकंड ज़रा अपने जाने को सोचें, हम सब क्या बनेगा जिस दिन मैं अल्लाह के सामने पेश की जाऊंगी। और आपको ये तो पता ही है कि कब्र में ही हिसाब किताब शुरू हो जाता है। क्या बनेगा उस दिन जब कब्र में सवाल होगा, मन रब्बू का, मन रसूलू का, माँ दीनू का, क्या बनेगा उस वक्त। अल्लाह ताला हमें मुनकर नकीर के सवालों पर इस्तकामत दे दे। बेशक पैदाइश की इब्तिदा वही करता है, फिर दोबारा वही पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, इनको पूरे इंसाफ के साथ जजा दे। चाहते हैं कि अल्लाह हमारा इंसाफ करे, कभी भी ना मांगे, ये कहें कि अल्लाह मेरे ऊपर अपना रहम कर दे। अगर अल्लाह हमारे साथ इंसाफ करने आ जाए, हम में से कोई एक ज़मीन पे चलता फिरता ना रहे, बस ये कहा करे अल्लाह मेरे साथ अपना रहम कर दे। और जिन्होंने कुफर का तरीका इख्तियार किया, लहुम शराबुम मिन हमीम, इनके लिए खौलता हुआ पानी है, वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून, और दर्दनाक सज़ा भुगतते हैं इस हक के इनकार के जुर्म में जो वो करते रहे। दुनिया में क्या मांगते हैं? कोल्ड ड्रिंक, वहाँ क्या होगा? खौलता हुआ पानी। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। हो अल्लज़ी जअल अश्शम्स ज़ियाउन वल क़मर नूरा, वही है जिसने सूरज को उजाला बनाया और चांद को चमक दी, और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर्रर कर दी, ताकि तुम इससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो। अल्लाह ने यह सब कुछ खेल के तौर पर पैदा नहीं किया, बल्कि बामकसद बनाया, और अपनी निशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। आप देखिए, कद्दरा हो मनाजिला, मुशरिक कल्चर पर चोट है। वो कहते थे सितारों के असर से बारिश होती है, बच्चों की पैदाइश पर उनके सितारों का असर होता है। कौन किस दिन पैदा हुआ उसका स्टार है, जिसको आज भी आप हॉरोस्कोप के नाम पर जानते हैं, याद रखिए इस्लाम में इसका कोई हिस्सा नहीं है। फलां पत्थर मनखूस, फलां रंग आपको सूट नहीं करता, फलां घर आपको सूट नहीं किया, 13 तारीख जो है वो मनहूस है, या आप इस घर में आए तो ये वो फलां जगह ये नहीं। मैं एक जगह किसी मुल्क के, हम एयरपोर्ट पे थे तो काउंटर्स बने हुए थे जिनके पास जाना होता है सामान लेकर, तो वहाँ देखा तो 1, 2, 3 था, लेकिन 13 नहीं था। बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और बहुत सारे काउंटर्स थे, तो हमने पूछा 13 किधर है, तो जो वहाँ आदमी काम कर रहा था कह रहे इस मुल्क में 13 का लफ्ज़ नहीं रखते, क्योंकि 13 मनहूस होता है। तो अगर कोई पैदा ही 13 को हो गया फिर क्या होगा? ये सब बेकार बातें, इस्लाम की इसमें कोई जगह नहीं है, इसलिए ऐसी बातों पर कभी वक्त ज़ाया ना करें। फिर ज़मीन और आसमान के बाद रात दिन की बात अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 6, इन फ़ी इख्तिलाफ़ अल-लैल वन-नहारी वमा ख़लक़ अल्लाहु फ़िस समावाति वल-अर्ज़ लआयातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून। यकीनन रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज़ में जो अल्लाह ने ज़मीन और आसमान में पैदा की निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवी से बचना चाहते हैं। क्या निशानी है कि अगर आज आपकी ज़िंदगी में गमों की रात है तो खुशियों की सुबह भी आएगी। कभी दुख हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, अल्लाह पे नज़रें लगाएं। रात को दिन में बदलने वाला इंशाल्लाह आपको भी गमों से खुशियों में लाएगा। और इसी तरह अगर आज बड़ी खुशी मिल गई आपको तो ज़्यादा ना मचलें, हो सकता है इस खुशी में अल्लाह को नाराज़ करने की वजह से ये खुशी छिने और गमों की रात आ जाए। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, हकीकत यह कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, ये कौन लोग हैं? वो उसका जवाब अगले हिस्से में, वरदू बिल हयात दुनिया वतमान्नू बिहा, और दुनिया की ज़िंदगी पर ही राज़ी हो गए और मुतमईन हो गए। 3 सेकंड गौर करें, कौन आता है इसकी ज़द में? सिर्फ दुनिया, मज़ा, मस्ती, मौज, ऐश, आराम, फ़िक्र, सिर्फ दुनिया की। और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, आज कौन गाफिल हैं? जो दुनिया समेट रहे हैं, दुनिया संभाल रहे हैं, दुनिया कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को वक्त ही नहीं मिलता कि कोई ऐसी बात कर सकें कि जिससे अल्लाह को राज़ी करें। आप सोचिए, 5 नमाज़ें भी किस दर्जे की पढ़ते हैं हम, उसमें भी कितनी दुनिया है, उसमें भी क्या कुछ है। अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे। उलाइक मावा हुमुन्नार, इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा, इन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तसाब वो अपने गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا، جو سچے لوگ رہے، جنہوں نے اس سچے دین کو مان لیا، وہ صداقتیں جو اس کتاب میں پیش کی گئی تھیں اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہدیہم ربہم بایمانہم. یاد رکھیے گا کہ انسان جب سچے دل سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے نا، تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. دنیا کی ہر دعا کسی نہ کسی آلٹرنیٹ میں مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کی دعا دنیا میں ضرور قبول ہوتی ہے. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایمان بندے کو ہدایت کی روڈ سے اترنے نہیں دیتا. جیسے آپ کا نیویگیٹر آپ کو روڈ سے اترنے نہیں دیتا، شور مچا دیتی ہے، باجی کیا، ٹیک یو ٹرن، ٹیک یو ٹرن پلیز، ٹیک یو ٹرن پلیز. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ نیویگیٹر یوز کرتے ہیں، اس کو آپ کی کتنی فکر ہے. پھر وہ آپ کو نیا راستہ ڈھونڈ کے دیتی ہے. پہلے 7 منٹ میں پہنچ رہے تھے، اب 15 لگ جائیں گے. اسی طرح کچھ لوگ سیدھے ہدایت کے رستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، صراط مستقیم، سبیل الجنہ پہ چلتے جاتے ہیں. کوئی ایسا فلکسویشن آتا ہے، کوئی ایسا معاملہ، اتر گئے، غلط ایگزٹ لے لیا، کوئی مجبوری آ گئی، کسی نے روک دیا یا خود رک گئے، بہانہ تو بنتا ہی ہے. اب اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، اگر اندر ایمان کا نیویگیٹر ہے تم واپس اس روڈ پہ چڑھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا سا پینڈا لمبا ہو گیا نا، کر لو، پہنچ تو جاؤ گے نا. لیکن اگر اترے رہے پھر کبھی جنت کے اس راستے پہ دوبارہ نہیں پہنچو گے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جتنا عقیدہ درست اتنی ہدایت زیادہ. بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بتاتا اتنا اچھا سمجھ آ جاتی ہے. نہیں، بتانے والے کی بات سے نہیں، آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کو ہدایت ملے گی. کچھ لوگوں کے لیے قرآن صرف کانوں کا چسکا بن جائے گا، صرف لذت لے کے اٹھ جائیں گے. اسی ہال میں روز شاید موویز چلتی ہوں گی، کیا کیا لوگ لے کے جاتے ہوں گے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم. جب میں نے پہلی دفعہ یہاں آ کے نماز پڑھی، میرا دل رویا تھا کہ اللہ زمین کے کونے کونے پہ اپنا نام بلند کر دے. کبھی آپ اس ہال میں آئے نا تو اس دعا کے ساتھ آیا کریں کہ اللہ اس طرح زمین کے کونے کونے کو اپنے نام کے لیے چن لے. انہی کے مائکس یوز کر کے آپ کی تلاوت چلتی ہے، ایک ایک چیز یوز ہو رہی ہے. کیا بڑی بات ہے کہ یہی چھوٹی سی نیکی کسی بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. تو ضرورت ہے اس بات کی، اپنے ایمان کو پختہ کریں. اور یاد رکھیے ایک بات، یہ ضرور نوٹ کیجیے گا جم میں اس بارے کا، کہ دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. دل وہ دروازہ ہے جس کا ہینڈل اندر ہے، باہر والا پیار سے، غصے سے، لاڈ سے، دعاؤں سے آپ کو پکارے، تب تک آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب آپ اندر سے دروازہ کھول کر نہیں پوچھیں گے کون. تو ہدایت کہے گی میں ہوں، مے آئی کم ان پلیز، آپ کہیے ویلکم، ویلکومن، آ جائے گی. آپ نے دروازہ نہ کھولا تو دوسروں کا تڑپنا آپ کو ہدایت نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی ہدایت دے دے. اور اس نے ہدایت کے بعد واقعی پھر وہ جنت جس میں نعمتیں بھری ہوں گی، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیا پکاریں گے جنتی جنت میں جا کر؟ اول فول باتیں، بیکار، بتکی نہیں. ذرا سنیے گا، دا واہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. مومن کی ڈکشنری میں یہی 4-6 لفظ ہوتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس سے زیادہ نہیں وہ بولتا. تو کم بولیں تاکہ اللہ کے ساتھ بات کر سکیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں. یعنی بری باتیں منہ سے نکالتے ہوئے ڈریں. اللہ کہتے ہیں اگر تمہاری بری دعائیں، بد دعائیں میں سن لوں تو تمہیں کب کا ختم کر چکا ہوتا. اس لیے ہم ان لوگوں سے جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. اور انسان کا حال یہ ہے. اب اپنا کوئی دکھی وقت یاد کیجیے، کوئی مشکل، دل دھڑک رہا ہے، خوف ہے، اندیشے، وسوسے، اور ہوا کیا؟ इंसान का हाल यह कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता रहता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है गोया इसने कभी अपने किसी बुरे वक्त में हमको पुकारा ही ना था। सच है कि नहीं? कभी बच्चों को देखा करें रिजल्ट वाले दिन, दादी अम्मा दुआ करें, अम्मा दुआ करें, और रोते पलटते रहते हैं। और हम कितनी दुआएं करते हैं अपने बच्चों की कामयाबियों की। तो जितनी फिक्र आपको मुझे अपनी औलादों और अपनी नस्लों की, दुनिया की तालीम की लगी हुई है ना, इससे ज़्यादा इनकी आखिरत के रिजल्ट की फिक्र करें। ये मिट्टी के बुत नहीं हैं, जीते जागते इंसान हैं। इन्होंने जाना है कल अल्लाह के आगे। इनकी दुनिया की डिग्रियां इनको आखिरत में कामयाब नहीं करेंगी। तो तड़प पैदा करें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और जब तक आप खुद अपनी हिदायत में संजीदा नहीं होते ना, आपको दूसरों की हिदायत की फिक्र भी लगती कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपनी फिक्र लगा दे। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए इनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने ज़माने में उरूज पर थीं, याद करें। नमरूद की कौम को, शद्दाद, हामान, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स गुजर गईं। अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको हलाक कर दिया। कब? जब उन्होंने तरक्की की। इसलिए नहीं, लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया। क्या था उनका जुल्म? कि उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही ना दिया। और हम इस तरह मुजरमों को उनके जरायम का बदला दिया करते हैं। अब इसके बाद हमने तुमको ज़मीन में उनकी जगह दी ताकि देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। यानी उनकी मोहलत ख़त्म, तुम्हारी शुरू। वो तो चले गए अपने हिस्से का काम करके, अब तुम हो, यानी जिसको कहते हैं ना, यू आर बीइंग टेस्टेड, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। इस वक्त अल्लाह ताला मुझे आपको देख रहा है, पहली कौमें चली गई। अल्लाह ताला देख रहा है कि हम अब इस दौर में, दुनिया में क्या अच्छा काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह से मिलना याद नहीं है। फरमाया, वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना। इस आयत को बड़े गौर से सुनिएगा, आज के दौर की बड़ी रेलिवेंट आयत है। जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, कुरान की बातें साफ साफ, क्लियर कट, मैनिफेस्ट ट्रुथ, तो क्या होता है? तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, कहते हैं कि इसके बजाय कोई और कुरान लाओ। कोई और नहीं है वर्जन कुरान का, लाइट सा, बड़ा रिलैक्सिंग, फजाइल बताए, जन्नत की बातें, खुशखबरियाँ, सब कुछ करो जन्नत, हलाल खाओ जन्नत, हराम खाओ जन्नत। नहीं भी, और तो कोई नहीं है। तो फिर एक और ऑप्शन आपको देते हैं, चलो फिर इसी में कुछ तरमीम कर दो, बददिल हो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, कोई इसका डाइल्यूटेड वर्जन ले आओ, जिसमें सूद हलाल, जिसमें मिक्स गैदरिंग हलाल, जिसमें शराब हलाल, थोड़ा सा तो चेंज करो ना, इतने स्टबन क्यों होते हो? ये है आज के दौर के मुतालबे। एक बुक लिखी थी किसी ने, 100 सफ़ों की है, इंग्लिश में, जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ इस्लाम डज वेस्ट वॉन्ट। वो आपको मशवरे दे रहे हैं कि अगर वेस्ट में रहना है ना, तो कैसे मुसलमान बन के आओ, हम तुम्हें सिखाते हैं। अब आप में से कोई किताब लिखे कि नहीं, हम भी एक किताब लिखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट डज इस्लाम वॉन्ट, कि इस्लाम को किस टाइप का वेस्ट पसंद है, हम तुम्हें वो बताते हैं, जिसमें न्यूडिटी ना हो, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी ना हो, जिसमें ब्रोकन फैमिलीज ना हो। आज हम मुस्लिम्स को इंटेलेक्चुअल जिहाद की ज़रूरत है। हम गुस्से में आ जाते हैं, फाड़ दो इनको, मार दो, बायकॉट कर दो। नहीं, आप भी लिखिए, वो लिखते हैं आप भी लिखिए, वो बोलते हैं आप भी बोलिए, वो करते हैं आप भी कीजिए। लेकिन याद रखिए, जब लोग इस कुरान को फेस नहीं कर पाते तो ये मुतालबे करते हैं कि कोई रिलैक्स्ड वर्जन लेकर आओ। अल्लाह के नबी को कहते थे, तो आज तो ये आम बात है, जवाब सुन लीजिए। अगर कल कोई आपसे भी यही फरमाइशी प्रोग्राम कर दे तो आप क्या जवाब देंगे? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूं, मैं तो बस इस वही का पैरोकार हूं जो मेरे पास भेजी जाती है। और ये जवाब आप भी नोट कर लीजिए। कभी आपसे कोई कहते ना, इतनी सख्त क्यों होती जा रही हो, ये तुम्हें क्या हो गया? कभी पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो हर बात पे नो, हर बात पे नो, ये भी गुना, वो भी हराम, ये भी हराम, चलो कुछ नहीं होता, करो करो, पहनो पहनो, चलो चलो, शाबाश, मानो मानो मेरी बात। तो जवाब लिख लीजिए, हाईलाइट कर ले, इन्नी अख़ाफ़ु इन असईतु रब्बी अज़ाब यौम नज़ीम। पीछे सूरत अलनाम में भी गुजरी थी, मैंने तब भी आपको कहा था आगे दोबारा आएगी। हो सकता है किसी ने उस दिन मिस किया, तो आज ये जुमला नोट कर लें। कोई दोस्त, कोई साथी, शौहर, बीवी, बच्चे, जब आपको गलत बात पे मजबूर करें, जज्बात की मार मारें, मोहब्बतों के वास्ते दें, तो क्या कहिए? अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का डर है। बेटा मैं क्या करूं, कब्र में भी तो तन्हाई जाना है ना। बेटा मुझे डर लगता है जब मैं पुल सरात से गुजरूंगी, फिर मुझे उस वक्त आप तो नहीं बचाएंगे। जुरत पैदा करें, ये जुरत इस्लाम देता है और माशरे को बुरा लगता है। वो कहता है कितनी अच्छी थी पहले, जब कुरान नहीं पढ़ती थी, सब बातें मानती थी, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, ये औरतें बोलने लग गईं, इनको ज़ुबान लग गई। नहीं, ज़ुबान नहीं लगी, पहले हमने अल्लाह के हक़ भी आपको दे दिए थे गलती से, अब एक एक करके अल्लाह के हक़ वापस ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह आपके हक़ पूरे मिलेंगे। ये लोगों को यकीन दिलाएं और कहो, अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? सच बात है ना, अल्लाह के नबी ने 40 साल किसी को नहीं कुरान सुनाया। फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात खड़ कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे? यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पाते। वयाबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम, ये लोग अल्लाह के सिवा इनकी परस्तिश करते हैं जो ना इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना नफ़ा, और कहते ये हैं, क्या कहते हैं? ये हैं अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानते हैं ना ना ज़मीन में? यानी ये बात है ही नहीं, बेसलेस बात करते हो। पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। शिर्क कैसे फैला? अब इसकी मिसाल, वमा कानन नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, इब्तदान सब लोग एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए। और अगर तेरे रब की तरफ से पहले से एक बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज़ में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं इसका फैसला कर दिया गया होता। और जो वो कहते हैं कि इस नबी पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो इनसे कहो, गैब का मालिक व मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। तलब हिदायत की कोई नहीं थी और बात करते थे मौजज़ों की, कोई मौजज़ा दिखाएं फिर मानेंगे। अल्लाह कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हें मौजज़ा देने की, तुम्हारे दिल में तलब ही नहीं है। तुम्हारी सारी बातें मैंने मान भी ली ना तो तुम फिर भी नहीं मानोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने घर में रहो और अपनी मर्ज़ी के काम करो। कैसे? इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। यहाँ देखिए कितना दो टोक फैसला, कि अल्लाह के नबी भी अपनी मर्ज़ी से कोई मौजज़ा नहीं ला सकते थे, आज मैं और आप कैसे छोटी छोटी बात को मौजज़ा कह देते हैं। अब फिर लोगों का हाल, ये सूरत तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि इंसान की साइकोलॉजी को खोल के रखती है। व इज़ा ज़क़्न नास रहमत मिन बादी दर्रा, लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मज़ा चखाते हैं तो फ़ौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियाँ शुरू कर देते हैं। सच है, ऐसे भीगी बिल्ली बने हुए थे, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, तहज्जुद भी शुरू, नमाजें भी शुरू, दुआएं भी शुरू, सीधे सादे, बस एक ही काम था कि बस अल्लाह राज़ी और दुनिया चलती रहे। फिर अल्लाह ने शादी करा दी, और करा भी ऐसे अच्छे घर में दी जहाँ मनपसंद चीज़ें मिल गईं। अब क्या हुआ? अब नमाजें छुटी, पहले तहज्जुद गई, फिर सुन्नतें गईं, वितर गए, होते होते फ़र्ज़ भी छूट गए। वो सादगी फैशन में बदली और फैशन बेपर्दगी में बदला। क्या बहुत सारे लोगों का यही हाल नहीं है? नेमते रास ही नहीं आती। देखिए उर्दू में एक बड़ा बुरा लफ्ज़ है, छिछोरपन। कई लोग छिछोरपन का शिकार नहीं हो जाते नेमतों पे, अकड़ते हैं, फूलते हैं, ऐसे लगता है खुशी वाले दिन हमसे कोई बड़ा हो तो आए सामने, चाल बदल जाती, ढाल बदल जाती। नमाज नहीं पढ़ी आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है अल्लाह के यहाँ, तकवा नहीं है तो आप तो अकरमकुम ही नहीं है। आप जितने मर्जी सच के लोगों को दिखाएं कि हम बहुत बड़ी शादी बना रहे हैं, लेकिन असल बात यह है इंसान दब के रहे। वो मौला सफ़र अली कौन है, उनका एक शेर है ना कि उसको इंसान ना को जिसको दुख में रब याद ना रहे, जिसको खुशी में खुदा याद ना रहे। तो याद रखिए खुशी और गम इम्तिहान के दो पर्चे होते हैं, اس دونوں میں پاس ہوں گے پھر انشاءاللہ جنت ملے گی. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر موافق ہوا پر خوش ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہو, پھر یکا یک بادے مخالف کا زور ہوتا ہے, یعنی الٹ طرف سے ہوائیں چلنے لگتی ہیں, طوفان آنے لگتے ہیں اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے پڑتے ہیں, اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. عموماً دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ سمندروں میں جا کر تو واقعی پھر جب جہازوں میں مزے کرتے ہیں, مستیاں کرتے ہیں, ایک دم طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹائٹینک جب ڈوبا تو وہاں کوئی ایک بھی ایتھیسٹ نہیں تھا, کیوں؟ سب نے رب کو پکارا. پھر کیا ہوتا ہے, فلم من جا ہوں ازا ہوں جب غون فی الارض, پھر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے, کشتی ٹھیک ہو جاتی ہے, تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ انسان کی تھوڑ دلی کا اظہار ہے. لوگو اب باغی ہو, خوشی مل گئی, نعمت مل گئی, بغاوت پہ آ گئے ہو, اللہ کے مقابلے پہ آ گئے ہو, تو یاد رکھو, ہائی لائٹ کیجیے گا اس آیت کو, یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, لوگو تمہاری بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. خوشیوں میں باغی بنتے ہو, نعمتوں میں باغی بنتے ہو, کل اس کی سزا ملے گی, پھر چیخو گے, پھر کہتے ہو ہائے کیا ہو گیا, دل نہیں مل رہے, گھر نہیں بس رہا, طلاق پہ نوبت آ گئی. بھائی تم نے خوشی میں اتنی بغاوت دکھائی اللہ کو, اللہ بدلے پہ آ گیا. دنیا کے چند روز مزے ہیں, لوٹ لو, پھر ہماری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے ہو. آج بھی بتاتا ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہمارا نام اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے کھلا ہوتا ہے. آگے پڑھیں گے سورت بنی اسرائیل میں. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں اور ہماری آیتوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا. اب ذرا تصور میں لائیے اس سارے منظر کو. زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی, جیسے آج کل باہر سبزہ آ گیا, پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. کھڑی فصل کٹ گئی, عین جوانی میں بچے کا انتقال ہو گیا, جس پہ امیدیں تھیں وہ تو قبر میں چلا گیا. کیا میری آپ کی زندگی یہی نہیں ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے لائف از اے فیڈنگ شیڈو, بہت پہلے کا ایک لیکچر ہے جو مجھے ذاتی طور پہ خود بہت پسند ہے. لائف از اے فیڈنگ شیڈو, زندگی ایک ڈھلتا سایہ ہے. سن کے دیکھے دل اداس ہو جاتا ہے اس کو سن کے, لیکن حقیقت یہی ہے. آج ہم پیئر پریشر میں جیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے گاڈ پریشر میں جیو. آج ہم دنیا میں جیتے ہیں, اللہ کہتے ہیں آخرت میں جیو. ہم کہتے ہیں میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہ سوچیو کہ یہ مر گئے تو ان کا کیا ہوگا. یہ جوانوں کو سوچنے والی آیت ہے, یہ جوانوں کی آیت ہے کہ اگر اسی لمحے دنیا سے چلی گئی تو کیا بنے گا. آج اس دنیا میں رہ کر کچھ کل کے لیے تیار کرنا ہے. اب دیکھیے پاکستان کا کروڑ پتی اگر اپنے روپوں کو ڈالرز میں بدلے گا نا, تو امریکہ میں جا کر ایک کمرے کا فلیٹ بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہاں قیمت زیادہ ہے. یہ دنیا ہے جگہ جہاں میں نے اپنے ایسٹس کو نیکیوں میں بدلنا ہے, مال جان وقت کو, پھر اس لیے فائدہ ہوگا. اور اگر آپ اور میں کہتے ہیں ہمیں نیکیاں پسند ہی نہیں, یہ قرآن کا حکم اچھا نہیں لگتا, یہ ہے وہ ہے, تو پھر آپ دیکھیں کوئی کہتا ہے ڈالر کا نوٹ مجھے پسند نہیں ہے, اس پہ تصویر کیوں ہے, میں نہیں استعمال کرتی, تو نہ کیجیے, کسی کا کیا بگڑے گا. لہٰذا دین جو مانا تھا وہ آ گیا, جو اللہ نے چاہا بس مل گیا, لے لیجیے, چاہتے ہیں تو لے لیں, نہیں دل چاہتا تو چھوڑ دیجیے. اس کے بعد آپ کی مرضی, آپ کے رب نے آپ کو مجھے وقت دکھا دیا, لیکن کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تو آپ پر میں کیا سوچیں, واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो। फ्रेजल है ये दुनिया, नापायदार, और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। क्या है दारुस्सलाम? जन्नत। हिदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। ऐ अल्लाह हमें भी आज दिखा दे। ऐसे नहीं लग रहा दरवाज़ा खोल के खड़ा है अल्लाह, कम इन साइड, आ जाओ। डरते क्यों? फिक्र नहीं करो, थाम लूँगा, पकड़ लूँगा। डरो नहीं, खौफ नहीं रखो, बस चलते जाओ, चलते जाओ। ले लो, कोशिश कर लो, कुछ तो होगा। और दुआ करें कोई पकड़ के हमें इस दारुसलाम में दाखिल करवा दें। बच्चों का दाखिला आप खुद करवा के आते हैं ना, कभी कोई बच्चा स्कूल में ना गया होता अगर पहले दिन आप ज़बरदस्ती उसको ना ले गए। आज भी अल्लाह आपको मुझे कह रहा है दाखिला ले लो, फॉर्म फिल कर लो, अपने आप को किसी जगह खपा लो। कोई फॉर्म फिल कर लो, चाहे वॉलंटियर फॉर्म फिल कर लो, कोई कोर्स का फॉर्म फिल कर लो, कोई नेकी के अमल की नीयत कर लो, ताकि तुम्हारे दिल में ये जो आज तलब आई है ना, ये कायम रहे। क्योंकि ये तलब उजागर करना कुरान का काम है। और अगर आप और मैं इस वक्त नहीं कुछ करते ना, तो वो जैसे पायलट फ्लेम होता है ना, पायलट चलता है ना, उस वक्त अगर आप गैस ना खोलें ना, तो चूल्हा नहीं जलेगा। इस वक्त हम पिघले हुए हैं, इस वक्त नेकियों की नियत करें। यहाँ से बाहर जाकर टेम्परेचर कम होगा, गाड़ी में बैठ के तो ठंडा होने लगेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अच्छे फैसले करने वाला बनाए, जो बात सुने अमल की नियत कर लें, फिर देखिए आपको क्या मिलेगा। अपने बच्चों के लिए कोई दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चों को दीन के खादिम बना लें। कभी आप सऊदी अरब जाएँ, आप पढ़ते ना, खादिम हरमैन शरीफैन, दो हरमों के खादिम, इतना प्यारा लगता है। आपको पता है कि जो वहाँ के किंग्स हैं, वो अपने आप को ये कहते हैं, हम खादिम हैं। तो अल्लाह इतना कादिर है, तो आपके मेरे लिए क्यों नहीं वो अच्छे अच्छे फैसले कर सकता? बस चल पड़िए उसके रास्ते में, वरना क्या है, जहन्नुम के अंधेरे। क्योंकि दुनिया की जहालत के अंधेरे थे ना, इसलिए आगे उसका तस्कर आएगा। फरमाए, जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया, इनके लिए भलाई है और मज़ीद फजल। ये फजल क्या है? अल्लाह के चेहरे का दीदार। इनके चेहरों पर रू स्याही और जिल्लत न छाएगी, वो जन्नत के मुस्तहक होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयाँ कमाई, ऐ अल्लाह हम ऐसे लोगों में ना करना, इनकी बुराई जैसी है वैसा ही बदला पाएंगे। जिल्लत इन पर मुसल्लत हो गई, कोई अल्लाह से इनको बचाने वाला ना होगा। इनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी, जैसे रात के स्याह पर्दे इन पर पड़े हों। काले तवे का ज़हन में तसव्वुर लाइए, लोगों के चेहरे स्याह रंग के होंगे जहन्नुम में। वो दोजख के मुस्तहक हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि इस रोशनियाँ देने वाली किताब और इस प्यारे नबी के साथ ताल्लुक़ जो नहीं जोड़ा। व यौम नख्शुरुहुम जमीया, अब शिर्क की कुछ कबाख्तें, जिस रोज़ हम इन सब को एक साथ अपनी अदालत में खड़ा करेंगे। फिर इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे, ठहर जाओ, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी। इनके दरमियान सच नबीयत का पर्दा हटा देंगे और इनके शरीक कहेंगे, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। देखिए ज़रा, सारी ज़िंदगी जिन पे नज़रें लगाई, वहाँ जाके वो मुकर जाएंगे। हमारे और तुम्हारे दरमियान तो अल्लाह की गवाही काफ़ी है, तुम अगर हमारी इबादत करते भी थे, तो हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मज़ा चख लेगा और सब अपने मालिक के हकीकी की तरफ फेर दिए जाएंगे, और वो सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे, वो गुम हो जाएंगे। इमेजिन करें, हाथ पो नहीं पड़ेंगे। कभी आप एयरपोर्ट पे जाएं, कोई कहता है, अच्छा हमारा वाकिफ़ है, आप एक्स्ट्रा सामान जितना मर्जी ले आएँ। अब लोग उनकी आस पे बड़े बड़े बैग उठा के ले गए, अब ढूंढ रहे हैं, इधर जा उधर जा किधर जा, फ़ोन किया पता चला आज तो वो ड्यूटी पे ही नहीं है। अब मारें बांधे फेंकें क्या करें, पैसे किसके दें, ये कपड़े जूतियों के पैसे जिनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। ये होगा उन लोगों के साथ जिनकी नज़रें इस दुनिया में लोगों पे लगी रहती हैं। तो आज इस दुनिया में ही अपनी नज़रें अल्लाह पे लगा लें, इससे पहले कि हम मायूस हो जाएं।